अब ये तो एक जनरल बात थी ना इस आयत के बारे में, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो उसका मैं हिसाब लूंगा, और उसके बाद जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, जिसको चाहूंगा छोड़ दूंगा। अब इसमें जो बात हमारे लिए समझने की है वो क्या है कि जो दिल के आमाल होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जो दुनिया से मुतल्लिक हैं, अहकाम दुनिया, तलाक, किसी को कोई दे के ना दे, किसी को आज़ाद करे ना करे, रजू, तिजारत, किसी को तोहफा दे ना दे। अब ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों से मुतल्लिक हैं। ऐसी तमाम चीज़ों पर दिल में इरादा करने से ये होती नहीं है, जब तक क्या आप अमल ना कर लें या इनको ज़ुबान से अदा ना कर दें। ठीक है, ऐसी आयतों पे अल्लाह ताला माफ़ी करेगा। जब तक आप बोले नहीं, किसी के घर गए, आपने देखा घर गंदा है, दिल में ख्याल आ गया कि खातून कोई ज़्यादा सफाई पसंद नहीं है, बोले नहीं, दिल में आया है और उसके हालात ने जाहिर किया है, तो अल्लाह ताला नहीं पूछेगा। हाँ, जब वो ज़ुबान पे आएगी और दो चार लोगों को सुनाएंगे ना, तुम्हें पता है कितनी गंदी है, तुम्हें पता है ऐसी है, बस फिर वो आपकी मोहरें सख्त हो गई। ठीक है, तो जो दुनियावी मामलात हैं उसमें जब तक ज़ुबान पे बात ना आ जाए पकड़ नहीं है इंशाल्लाह, और ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन यहाँ जिस पकड़ की बात है ना कि सबको पकड़ा जाएगा, ये है आखरत के मुतल्लिक बातें। उसके अंदर जो बात दिल में आएंगे, अब जब आखरत के मुतल्लिक सोचते हैं तो फिर फौरन इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं ना, कि इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मसलन अल्लाह की ज़ात, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये दिल का अमल है ना। तौहीद या शिर्क दिल के अंदर होता है ना, तो इस पे पकड़ होगी कि दिल में ईमान था कि नहीं था, या दिल में कुफर था कि नहीं होगा। फिर इसी तरह आप देखिए, मुनाफ़क़त दिल का ही रोग है ना, दिल खोटा होता है ना, इस पे पकड़ होगी। किसी पे शक करना, डाउटफुल होना, किसी के बारे में शक करना, इस पे पकड़ होगी। बदगुमानी, बस वो है ही ऐसी, उसने सोचा ही होगा, ये उसने तो आना ही नहीं था, ऐसे ही टाल दिया, वो तो हमेशा लेट ही आती हैं और वो तो ऐसे ही करती है और ये करती है, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर पकड़ होगी। तो क्या बात समझ आई, कुछ चीज़ों पे पकड़ नहीं होगी दिल में आने वाली, जिस पे इख्तियार नहीं है, जिस पर हम रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखें कि कोई खाना खा रहा है ना, तो खाना खाते हुए मुतमइन था, लेकिन जूं ही उसको शक हुआ कि इस खाने में कोई ख़राब चीज़ पड़ी हुई है, उसके बाद खा सकेगा? उसको वो खाना कितना ख़राब लगेगा, उसको वॉमिट होने लगेगी कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया, पता नहीं मेरे अंदर क्या चला गया। करना क्या है, जहाँ पता चल गया वहीं छोड़ दो, बल्कि जो किया हुआ था उसको भी निकालने की कोशिश करो। यही है हमारे दिल की सफाई का तरीका। बेइख्तियारी से जो बातें आती हैं ना दिल में, ख्याल फौरन झटक दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ख्यालात होते हैं ना, इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। क्योंकि इस आयत पे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, कंट्राडिक्शन, कि देखें एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लम की एक रिवायत में भी आता है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दिया उस पर जो उनके दिल में आया, जब तक कि उसको ज़ुबान और अमल से बयान न कर दिया जाए, यानी अल्लाह ताला उस बात पर इंसान की पकड़ नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है पकड़ा जा रहा है, तो इस मज़मून को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, ताकि कोई बंदा कल ये ना कह दे कि कुरान पाक में कॉन्ट्राडिक्शन है या इसके अंदर तजाद है। और ये जो रिवायत मैंने आपको बताई कि अल्लाह ताला ने अब उम्मत से ऐसी चीज़ों को माफ़ किया हुआ है, ये सही बुखारी की रिवायत है। आपने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मती मा वसवसत बिही सदूरुहा मालम तामल औ नतकल्लम। ठीक है, कि अल्लाह ने मेरी उम्मत से दिल में आने वाली बातों को मुआफ़ कर दिया, अलबत्ता इन पर गिरफ्त होगी जिन पर अमल किया जाए या जिनका इजहार ज़ुबान से कर दिया जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक प्रोसेस देखेंगे कि दिल में जब कोई ख्याल आता है तो क्या वो एकदम ख्याल बस आ गया? नहीं, इसके स्टेप्स होते हैं, इरादे के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला दर्जा होता है वसवसा। शैतान या फिर फरिश्ता भी हमारे दिल में एक वसवसा डालता है, कोई ख्याल आता है हमारे दिल में, कोई भी सोच लें, आया और गुजर गया। ये ऐसी है जैसे गाड़ी में बैठा हुआ शख्स जो खुद गाड़ी नहीं चला रहा, वो विंडो से देखना शुरू कर दे, क्या होता है, कितनी तेज़ी से सीन बदलते हैं ना। अभी एक दुकानें थी तो थोड़ी देर बाद खाली जगह आ गई, फिर साथ दूसरी गाड़ियां दिख रही। ख्यालात का पहला दर्जा ही होता है, सारा दिन भागते हैं, फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं तेज। जो बंदा जितना एक्साइटेड होता है ना, उसके जहन में इसी तरह ख्याल आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। ये पहला दर्जा होता है कि जिसमें इंसान के दिल में ख्याल आता है और गुजर जाता है। इसके बाद अगर ये आया तो इस पर कोई पकड़ नहीं इंशाल्लाह। इसके बाद अगला दर्जा होता है तरद्दुत। तरद्दुत रा दाल दाल से है। तरद्दुत क्या होता है? कभी करने का इरादा बनता है, कभी ना करने का बनता है, कभी करना चाहता है, कभी नहीं करना चाहता है, थोड़ा सा कर भी लेता है फिर छोड़ देता है। कब से इरादा कर रहा है किसी गुनाह को छोड़ने का, लेकिन फिर हो जाता है, फिर ख्याल आता है, डर आता है तो छोड़ता है। तरद्दुत समझ रहे ना, हेजिटेशन यानी गोमगू की कैफियत, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। कभी आपने कहीं जाना हो ना रात को दावत में, आपका दिल ना भी हो फिर भी कभी आप कहते हैं शायद चली जाऊं, फिर आप कपड़े देखते हैं अच्छा निकाल लूं, इस्त्री करवा लूं, कर लूं, फिर आप कहते हैं नहीं शायद ना ही जाऊं। ये जो कैफियत है ना, ये तरद्दुत की है। इस सारे मरहले में कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन इंसान उस सोच पे पुख्ता नहीं होता। बस आप कोई गुनाह का इरादा कर रहे हैं, आप कहते हैं इतने दिन हो गए हैं कोई अच्छी मूवी नहीं देखी, वट एवर, चलो मूवी नहीं देखी। ये जो पहली बात थी ना, ये वसवसा थी। फिर शैतान पुश करता है, पीछे से घेर लगाता है, देखो देखो इस वक्त आप तरद्दुत में, नहीं छोड़ो क्या फ़ायदा, जब छोड़ी है तो छोड़ ही दो, क्या करना है देख के। फिर किसी दिन दिल में आता है, कहीं लगी होती है तो आंखें उठा के देख लेते हैं। ये सारी कैफियत जो बीच की तरद्दुत की है, लेकिन इस पे इंसान जमता नहीं। इसके बाद तीसरा दर्जा होता है ना, वो हम का होता है, हम्मी व गम्मी। एक हदीस में आता है, हम क्या होता है? गौर व फिक्र के बाद की हालत। अब गौर फिक्र कर चुके हैं, करना बेहतर है कि नहीं करना बेहतर, करूंगी थोड़ा सा मजा आएगा लेकिन गुना रहेगा अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर, चलो नहीं करती। ये जो कैफियत है ना, फिर इसके बाद इंसान हम में आता है, लेकिन फिर वो सोच लेता कि नहीं बस अब कब तक रुकेंगे, अब ये छोड़ो, और वो उस काम को कर लेता है, उसकी तरफ बढ़ता है। वो चीज़ उसको भी बुरी नहीं लगती, शैतान तावीला सिखाता, लो सब करते हैं मैं क्यों ना करूं, और सबका मामला अब मैं अकेली इस दुनिया में रह गई हूँ, क्या मुझे नहीं घर चाहिए, और क्या मैं ऐसे रह लूँ। और मुझे इस तरह करते करते फिर एक वक्त आता है कि फिर इंसान कहता नहीं बस अब करना है मैंने। इस नौयत को या इस स्टेज को अज़्म कहते हैं, अज़्म, आइन ज़ा मीम। और अज़्म के बाद फिर अज़्म समीम, पुख्ता इरादा करके रहूँगा बस। ये जो शुरू के तीन दर्जे थे ना, ये माफ़ है इंशाल्लाह, वसवसे माफ़, तरद्दुत माफ़, हम माफ़, लेकिन चौथा इरादा, अज़्म का इरादा, इस पे पकड़ है। इतना सोच के फिर भी बंदा गलती काम करे तो अल्लाह ताला फिर उस गुनाह पे उसको पकड़ेगा कि तुमने इतनी चीज़ों से अपने आप को रोक के फिर भी ना रुके। इसीलिए तो हदीस में आता है कि कातिल और मकतूल अगर दोनों मुसलमान हैं तो दोनों जहन्नमी हैं। तो लोगों ने कहा कि कातिल का तो गुनाह यह है कि उसने कत्ल किया, तो मकतूल का क्या गुनाह है? तो आपने फरमाया वो भी तो इरादे में था ना कि अपने भाई को कत्ल करे, होना तो एक नहीं था ना, तो ये उस इरादे की वजह से पकड़ जाएगा। इन्नहु कान हरीसन अला कत्ल साहिबिही, कि वो भी अपने भाई के कत्ल पर हिर्स रखता था। तो खुलासा क्या है कि हमने किसकी फिर इसलाह करनी है? अपनी सोचों की इसलाह करनी है। जब सोच अच्छी हो जाती है ना, तो हमारे अमल भी अच्छे होने लगते हैं, और नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान अपने आप को अच्छे से अच्छा करता है। और हर लम्हे इस चीज़ की कोशिश करनी है कि अल्लाह मेरे दिल दिमाग के अंदर वही चीज़ें रखना जिस पे पकड़ना हो, और हम जितना अपने आप को रोकेंगे ना उतना ही अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। आखिरी बात इस आयत के नाते से कि भाई ये क्या बात है, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहूँ माफ़ करूँ जिसको ना करूँ। क्योंकि इस हिस्से को भी लोगों ने मिसअंडरस्टूड करके गुनाहों को आम कर लिया अपने लिए। जी अल्लाह ने जिसको माफ़ करना है वो उसको ही करेगा, तुम कुछ भी कर लो। सुनी हुई ये बात, हमारे अमलों से क्या होगा, अल्लाह ने तो ऐसे जिसको माफ़ करना है उसको करना है। और इसी तरह लोग कुछ और बातें कहते हैं। इस बात को समझने के लिए एक जुमला नोट करें, इंशाल्लाह पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जन्नत में दाखिल होने की दो शर्तें हैं, यानी दो चीज़ें साथ मिलेंगी ना फिर बंदा जन्नत में जाएगा। एक है अमल, ये देखिए पेन है ना, इसके दो हिस्से हैं, ये ढक्कन है, ये साइड है। इसको खाली भी मैं छोड़ दूंगी ना तो कुछ देर के बाद ये मार्कर सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा, اور خالی کوئی ڈھکن مجھے دے گا تو بھی میں اسے نہیں لکھوں گی۔ ضرورت کیا کہ یہ دونوں ملے رہیں، جب مجھے ضرورت ہے میں اس کو کھول لوں، ہائی لائٹ کر لوں اور پھر بند کر دوں۔ یہ دو چیزیں ملی ہیں نا، اسی طرح جنت میں جانے کی دو چیزیں لازمی ہیں، یعنی دو چیزیں اس طرح آپس میں فٹ ہونی چاہیے جیسے یہ پین فٹ ہو رہا ہے۔ ایک ہے عمل، انسان کے عمل، کوشش، ارادہ، نیت، جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے، نمازیں، روزہ، وٹ ایور، پوری شریعت۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی مشیت، اس کی رضا۔ ہم عمل کر لیں، خالی کھوکھلا ڈھکن ہے، کیونکہ ہماری باتیں ہیں ہی کھوکھلی، اس درجے کی ہے نہیں کہ اس کے بدلے میں جنت خریدے۔ دیکھیے اس ڈھکن کی قیمت کون دے گا؟ آپ کو کوئی 50 سینٹس کا بھی کہے گا تو آپ کہیں گے میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے عمل اس طرح کھوکھلے ہیں، ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارا سارا کام جو ہم کرتے ہیں، کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کو پیش کریں؟ ہماری نماز ہے اس قابل کہ اللہ کو پیش کریں؟ کیونکہ یہ تحفے ہیں، اللہ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، یہ کھوکھلے ہیں۔ ہاں ہمارے کھوکھلے ہی عمل، ٹوٹے پھوٹے ہی عمل، بیکار ہی صحیح، پڑھی تو ہیں نمازیں، جیسی بھی ہوئیں ارادہ تو کیا، اپنی حیثیت سے تو بہتر کی، لیکن جب یہ کھوکھلے ڈھکن والی چیز آتی ہے نا تو ادھر سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں فرشتوں، تم کیوں کہتے ہو کہ اس نے ایسے کیا ویسے کیا، یہ دیکھو میں اپنی رحمت لاتا ہوں، یہ راستہ مل گیا، آپ جنت میں آ گئے۔ اب چلیے دوسری طرف، آپ کہتے ہیں کہ میرے عمل سے کیا ہونا ہے، پھینکو اس کو، کوئی نہیں عمل کرو، اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، کیونکہ فیغفر لی من یشاء و یعذب من یشاء، تو یہ خالی ڈھکن جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صرف میں یہ مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ بات آسان سے آسان ہو جائے۔ ایک بستی ادھر ہے اور دوسری بستی ادھر ہے اور بیچ میں دریا ہے، آپ کو اس بستی سے اس بستی میں جانا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں جو برج ہے نا وہ جب جڑے گا نا تو پھر ہی آپ گزریں گے نا، اور اگر برج بیچ میں ٹوٹا ہو یا کھلا ہو تو آپ نہیں گزر سکتے نا۔ ایسا ایک برج میں نے دیکھا بھی، دن میں اس کو سڑک بنا دیتے ہیں، کسی ملک میں دیکھا سارا دن وہ روڈ بنی رہتی ہے اور لوگ اس طرف کے لوگ ادھر آتے رہتے ہیں، پھر جب رات کا ایک خاص وقت انہوں نے دیا، یہ برج جو ہے یہ بیچ میں، اس میں اتنا سا ایک ٹکڑا، تقریباً کوئی ہوگا کوئی بڑھ 20-25 فٹ یا اتنا جتنے سے گزرے، تو وہ ٹکڑا رات کو وہ بھی کھول دیتے ہیں، ادھر کا ٹکڑا یوں کھڑا ہو جاتا ہے، رات کو ان کے شپس اور جو چیزیں اس اوشن میں سے گزرتی ہیں نا، تو لوگ ایک خاص وقت کے بعد وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ ادھر کھڑے ہیں، یہ دنیا ہے، ہم سب ہیں، ادھر رائٹ ہینڈ پہ یہ جنت ہے، بیچ میں ایک برج چاہیے، وہ برج کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ادھر کی روڈ، ادھر کی لے لیں دنیا والی، یہ آپ کے ہاتھ میں، عمل کی کوشش، نیت، اور ادھر والا راستے کا جو ہولڈر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، رحمت کا۔ آپ ادھر سے عمل لاتے ہیں، اللہ رحمت لاتا ہے، یہ دیکھیے روڈ بن گئی، اب آپ خوشی سے بھاگیں گے، یہی کل آپ کا بول سرات بن جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ لیکن اگر آپ کے عمل نہیں ہوں گے نا، تو یہ دیکھیے آپ اسی مثال کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت لگا دی، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہ بھی عمل کریں اللہ لگا دے رحمت، تو آپ ذرا سوچیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس روڈ کے ساتھ تو لگی ہوئی ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں، اس ٹکڑے سے کیسے گزریں گے؟ یہ عملوں کے ٹکڑے سے گزر کے اللہ کی رحمت ملے گی تو جنت ملے گی، بس سمپل سی بات ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے اور نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے۔ سورہ بروج کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، قرآن پاک میں آتا ہے یفعل ما یشاء، بہت جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمتوں کو بلایا جائے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت لکھی ہوئی ہے، سورت نام کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن انسان اس رحمت کو بلانے والے کام کرے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے، روکا ہوا نہیں، وہ بھیجنا چاہے سب کو جنت میں بھیج دے۔ آپ کہتے ہیں چلیں اسی مثال پہ دیکھ لیں، کیا ہوا بھائی، ہم نے تو نہیں لگایا تھا اپنے اعمال کا یہ ٹکڑا ہولڈر جتنا پین کا ہولڈر ہے، اللہ اپنی رحمت کے اسے کو اور بڑھا دیتا، کر سکتا تھا، لیکن جہاں وہ الرحیم، الرحمن، الغفار، الستار ہے نا، تو وہاں وہ العادل بھی ہے، وہ عدل بھی کرے گا، وہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اگر اس نے عمل نہ کرنے والوں کو عمل کرنے والوں کے برابر کر دیا تو دنیا میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ محاسبہ کیا جائے. اب اسے ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس تلاوت کے دوران صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، کسی تیسرے کو بیچ میں نہ آنے دیجیے گا. چپکے چپکے جو دعا کرنا چاہیں اپنے رب سے کر لیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی آیت کو سمجھ لیتے ہیں اس میں اور بغیر سمجھے اس کے پڑھنے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ پڑھتا ہے نا فرق. تو قرآن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، اور یہی ہے ہمارا اس قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد، کہ ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ ہمیں اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آنے لگے. اسی سے انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے. اور یہ جو ہم خوف رکھتے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے، ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت میں غالباً 10 سے 20 کے بیچ میں ایک عدد ہے، اتنی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟